बाल्यकाले थेकेई जमीदारे वंशेर लोक अत्यंत कोमल स्निग्धता शरीर अत्यंत सुंदर बहु वर्ण आताहार मा छिलेन जमीदारी जमीदारेर में अत तहार परे तिनि छिलेन अत बाल्यकाल थेकेई जखन तिनि क्लास फाइव सेकेंडे फाइव फोर शिक्षाते तिनि पढ़े তখন থেকে জমিদারি সম্ভাব ইত্যাদি সব কিছু ব্যবস্থা উনি করতেন। অতএব এখানে প্রভুপাদের বোলাতে এখানে কার্টুন চেয়ার মাঙ্গিয়ে ওইতে বসতেন, আর আর্থিক কাপড়ার জামা আর শান্তিপুরি ধুতি আর হাতেটে বেদ লাঠি আর দুটি ঘোড়া ওইখানে বাঁধা থাকতো। তারপরে তে চড়ে দিয়ে আর বাবুর মতন এখানে তিনি থাকতেন। এক সময়তে ওরা খাজানা দেয় নাই, একজনকে মোড়কে ডেকে নিয়ে আর তার খাটের তলাতে কি টেবিলের তলাতে তাকে পুড়ে দিয়ে আর কি কাঁঠাল গাছের তাকে বলেছে ঝুলিয়ে দে, আর চাপরাশি গুলিয়ে দু কোড়া তাহাকে দে। আর যে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাপ বাপ করে তাহার বাপ মা এসে আর তাহার খাজানা দিয়ে গেল, আর তার দেখে সব লোক নিজে দিকে। পূর্বে বলতো সব এখানকার লোক মুসলমানরা, ও আমাদের সরস্বতী ঠাকুর এই ছেলেদের মাথাতে কাঁঠাল ভেঙে খায়, আর দেখো তো কিরকম বোকা জাহাজ এরা ওই পায়খানার নাদা বয়ে নিয়ে আসে মাথাতে, আর পড়া লিখা বড় বড় ঘরের ছেলে আর এদের দেখো তো কিরকম হচ্ছে, চাকরের মতন খাটাচ্ছে, এদের বুদ্ধি যায় নাকি। গুরু মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে একেবারে পাল্টে দেন অবস্থা, প্রভুপাদের সমাধির কাছে সে মুসলমানদের সমাধি ছিল সেখানে কি বলে কবরগাহ, গুরু মহারাজ একদিনে তো উল্টে পুল্টে দিয়ে ফেলে দিয়ে একেবারে মূল সময়ে, আর সেখানে বড় বড় গাছ আম গাছ কাঁঠাল গাছ আবার গোলাপ ফুল ইত্যাদি সমস্ত রোপণ করে দিয়ে এক একদিনে তো সরিয়ে দিয়ে তিনি ওখান থেকে ভাগিয়ে দিলেন। তারা কেশ্বরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং সুপারিনটেন্ডেন্ট আসেন, কিন্তু দেখেন যে এখানে তো কবরগাহ কোনো নিশানা নেই, এখানে তো বাগান আছে বেশ সুন্দর। তখন তারা আর উল্টা রিপোর্ট দিয়ে দিল, তখন সব কিছু দূর হয়ে গেল। এইরকম হতে গুরু মহারাজ এখানে শাসন করে দিয়ে প্রভুপাদের মনোভীষ্ট সেবা করেছেন, যা আর পর কোন মহারূপ দ্বারা সম্ভব নয়। প্রাণটি হাতে করে নিয়ে আপন পাপকর্ম সেবা করেছিলেন তার। এইখানে গুরু মহারাজের নতুন গুরুনিষ্ঠ সেবক আমরা একমাত্র পুরেশকে দেখি, রামানুজের সময় এর ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। এই গুরু পাদপদ্মের জয় হোক, জয় নিত্য লীলা প্রভু Bangale paiya khailo nachiya
Anupama bhava vilasam.
দর্শন করেছিলেন, এই জন্য তাহার অন্তরের নেবিড়া প্রকাশের জন্য এই গীতের নাম হচ্ছে অন্তর্বীজ। মায়াপুর, মায়াপুর হচ্ছে যেরকম বললে গোলক, গোলকেতে দুটি স্থান মাধুর্য এবং ঔদার্য। মাধুর্যের নাম হচ্ছে বৃন্দাবন ধাম, সেখানে কৃষ্ণের যাবতীয় লীলা বিলাস গুলি প্রকাশিত আছে। এবং পাশে তারা নিকটেতে একটি ধাম আর আছে যাকে বলে শ্রেষ্ঠ, সেখানে চৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য লীলা সেখানে সে প্রকাশিত হয়। ওইখান থেকে ব্রহ্মার এক কল্পেতে যেরকম কৃষ্ণ লীলা আছে ওই রকম হয়তো গৌর লীলা এখানে প্রকাশিত হয়। আর অন্যদিকে গৌরচন্দ্র এই ধাম ছেড়ে দিয়ে কোনো সময় যান না, নিত্যই তাহার লীলা প্রকাশিত আছে। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিতে পায় অধ্যাপিত সেই লীলা করে গৌরায়, কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়। এই স্থানে চৈতন্য মহাপ্রভু ওইখানে নীল গাছ দেখছেন, ওই নীল গাছ তলায় তিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন সচি গ্রহেতে। ওই পুরনো নীল গাছ মহাপ্রভু গৃহে তিনি অন্তর্ধান হয়েছেন, তার বদলেতে আজ থেকে বোধ হয় 30-40 বছর আমাদের সময়েতে ওই গাছ পড়ে যায়। আর একটা ছোট গাছ এখানে রোপণ করা হয়েছিল সেই এখান গাছটি আছে। এইখানেতে জগন্নাথ মিশ্রের ভবন ছিল, শচী দেবী জগন্নাথ দেব মিশ্র এখানে থাকতেন। এইখানেতে প্রথমে বিষ্ণুরূপের জন্ম হয়, পরে শচীনন্দন বৌধুরীর আবির্ভাব হয়। আমাদের গুরু মহারাজের আনুগত্যেতে এই স্থানে খোদাই হয়। যখন প্রভুপাদের ইচ্ছা হলো যে এখানে সুরঙ্গ মন্দির হবে, তখন কলিকাতা সফিচরণ রায় শ্রেষ্ঠ আর্য তিনি এর জন্য সম্পূর্ণ টাকা তিনি দেন। এবং সেই সময়তে গুরু মহারাজের উপরে এটা ভার হলো যে তিনি সুরঙ্গ মন্দির তিনি করবেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদিকে নিয়ে প্রথমে ভিত্তি খোদাইতে আরম্ভ করেন। তিনি আরম্ভ করেছে চৈতন্য মঠে যে ওখানে যান, একটু পরেই এখানকার যে হেড মিস্ত্রি যে খনাই খোদাই করতেছিল সেই তার মধ্যে দিকে একটা চতুর্ভুজ মূর্তি সেটি পায়। সেইটা নিয়ে আবার গুরু মহারাজ কাছে দবে দিয়ে যায় আর তাহাকে দেখায়। তখন গুরু মহারাজ বইকে নিয়ে ওখানে যারা ছিলেন পূজ্যপাদ নরহরি প্রভু, তারপরে মহানন্দ প্রভু আর সব লোকের তাহাকে দেখা, তারপরে প্রভুপাদ আসেন। আর দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হন যে এই একটি তাহার স্মৃতি পাওয়া গেল যে এইখানে জগন্নাথ মিশ্র তাহার দেবতা শ্রী চতুর্ভুজ নারায়ণের উপাসনা। তারপরে উপরেতে এখানে সুরঙ্গ মন্দির ইত্যাদি করে এই স্থানেতে চৈতন্য মহাপ্রভু বাল্যবস্থাতে খেলাধুলা করতে করতে একটা সাপকে ধরলেন, বড় কৃষ্ণ দর্শন। সচিমা দেখে এখানে যে খাবড়িয়ে যায়, জগন্নাথ মিশ্রে আসে, সব লোক দেখে একেবারে খাবড়ে গিয়েছে, এটা সাপটা কামড়িয়া লাগে। তখন সকলে ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগে। ইতিমধ্যে অনন্ত দেব মহাপ্রভুর স্পর্শ পেয়ে আবার ধীরে 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 অন্তর্ধান। এইখানে মহাপ্রভু একাদশী দিনেতে তার পক্ষিদা লেগেছে, এই ভক্তের নাম জগদীশ পণ্ডিতের বাড়িতে আমি প্রসাদ পাবো, ওইখানে আমার অন্যান্য হয়েছে ইত্যাদি বলতে লাগলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ওখানে যে স্কুলে যেতেন আর সেখানে তো মহা উদ্ধব তিনি ছিলেন, ওখানে যে গঙ্গা ঘাটে যে ওইখানেতে সব বালিকা মেয়ে তারা গঙ্গা পূজার জন্য যেত। আর মহাপ্রভু কি করতেন, নিবাই তিনি গিয়ে বলতেন যে দেখ এই যা পূজার যে দ্রব্য ওইগুলি আমাকে দে, সন্দেশ কলা ওই যা কিছু নিয়েছে আমাকে দাও, যদি আমার গঙ্গা পূজার দিকে আমাকে দাও, আর যদি না দাও তাহলে আমি তোমাদের বর দিব। কি বর দিব, বুড়ো কালো দাঁত ভাঙা এইরকম তোমাদের বর দিব, আর সাত সফিন তোমার হবে, আর বুড়া ফল তার হবে ইত্যাদি বলতে তারা ভয়কে তারা তাকে দিয়ে দিত। আচ্ছা হিন্দি বলতে সফিন লোক সমেছে। এই পর চৈতন্য মহাপ্রভু কাজ
के मंदिर की खुदाई होते समय में यहाँ से सर्वोत्कृष्ट कुर्सी मिली जो महाप्रभु जी के पिताजी जगन्नाथ मिश्र और सची मैया जिस विग्रह की नारायण विग्रह की पूजा करती थी वो उसमें खुदाई करते समय मिला। सब लोगों को मालूम हुआ कि जहाँ ये चेतन महाप्रभु का ही आत्मभाव होता है। यही पर चेतन महाप्रभु बच्चों के साथ में खेलते खेलते स्कूल में जाते और वहां पर छोटी छोटी बालिकाओं को छेड़खानी करते और कहते कि देखो तुम गंगा पूजा के लिए जो फूल पुष्प संदेश फई मिठाई इत्यादि लाई है उससे हमारी पूजा करो और हमको खिलाओ, हम तब तुमको बर देंगे। अच्छा तुमको सुंदर सुकांत तुमको बर मिले, तुमको सुंदर पुत्र हो और तुम सौभाग्यवती हो और यदि नहीं देगी तो हम तुमको और तुम लोगों को भी और एक और बर देंगे, तुम्हारा पति बुढ़ा हो काला पत्था हो दांत बाहर निकलने वाला हो और तुम्हारे पति जो होंगे उनकी सात स्त्रियां होंगी, सात स्त्रियों की तुम सौ दिन बनेगी। इस तरह से उनको सुन करके वो लोग लज्जित हो जाती और डर के मारे कहीं बालक के पुत्र का जरिए क्या निकल जाए और हम लोग की जिंदगी हो जाए, इसलिए उनको गुप्त संदेश प्रदान किया। और गंगा और दुर्गा वो तो मेरी दासी है, मेरी पत्नी है। भाई राम राम बच्चा ये क्या कहता है, ऐसा मत कहो। यही पर सिंधा खोला बेचा पासी में बाजार में मंगल खोला बेचा करते खोला मैंने केले के पत्ते केले के फल फूल और दूसरे लौकी कभी साग कभी कुछ बिक्री करने आते और महाप्रभु जी जाकर के उन्हीं की दुकान में जाते और बस सीधा ये हमको दे दो ये हमको दे दो। वो कहते जैसे भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तीन चार आना पैसा बड़ी मुश्किल से बेचता हूँ, आधा तो गंगा जी की पूजा में लगाता और आधा में से आधा और दूसरों अतिथियों की सेवा में थोड़ा सा बच जाता है, किसी प्रकार से जीवन निर्वाह होता है, कभी मिलता है खाने के लिए कभी नहीं। और तुम हमारे दुकान पर वो जाकर के छेड़खानी करते हो और उसे लेते हो और मैं ये हो जाती है। महाप्रभु जी ने कहा कि हम तुम्हारे ही दुकान से लेंगे। महाप्रभु का विचार किया दुर्योधन के घर में मेवा त्याग करते हैं किंतु विदुर के घर में केले का छिलका खाते हैं उसी में उनको परमानंद होता है, इसलिए अपने भक्तों के चीजों को वो ले लेकर के छीन छान करके खाते हैं और विषय लोगों के महावैभव युक्त रसा स्वाद युक्त चतुर्विध भोज्य इत्यादि को भी देखते नहीं है, उल्टी तरफ से देखते। यही पर चैतन्य महाप्रभु जब आते थे तो विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया जी गंगा स्नान करने के लिए जाते, विष्णु प्रिया के संबंध में भी यही महाप्रभु जी को देख करके बड़े आकर्षित थी। सची माँ जब स्नान करने जाती तो विष्णु प्रिया को देखा देख करके कहे यदि ये हमारी बहू बन जाती तो हमारा घर बन जाता। पीछे से उन्हीं से विष्णु प्रिया जी से इनका विवाह। यही पर एक विश्व को विजय करता हुआ एक संस्कार करने वाला केशव काश्मीरी एक्टर लोग आश्रम पंडित विश्व के विजय करते करते काशी आगे जी के दक्षिण भारत के दक्षिण काशी रामेश्वर पर्यंत जे और बड़े बड़े विद्या के केंद्र मिथिला सब नीचे परास्त करते करते एक स्थान से आते तब महाप्रभु वयस हो 12-13 वर्ष एक संस्कृत स्कूल आरंभ करे दिए था उसे संस्कृत शिक्षा के लिए देते पढ़ाते संस्कृत की शिक्षा बच्चों को देते और उसने आकर के गान किया उसके साथ में गाड़ी से फल करके समस्त शास्त्र था वेद मंत्र शास्त्र पुराण परिषद इत्यादि सब ली सब लेकर के यहाँ आए और उसके साथ में सैकड़ों उनके बड़े बड़े शिष्य जो पगड़ी बंधे हुए समस्त वेदांत सभी इत्यादि सब थे यहाँ आकर के गान किया यदि कोई है तो हमसे शास्त्र प्राप्त करे और नहीं तो यह पत्र नहीं करके दे पंडितों की। उस समय में यहाँ के पंडित थक थर आ गए डर के मारे क्या करें, उन्होंने सोचा कि ये निमाई बालक जो व्याकरण का पंडित है ये हमको तंग करता थक से हमको तंग करते रहता है इसलिए उसी के पास में पहले भेज दो, यदि यदि उनको हरा दिया तो सब ठीक है तो हम भी जयपुर से लिख देंगे और यदि खुद हार गया तो हम कहेंगे हमारा छात्र तुमको हरा दिया हम तुमसे क्या बात ऐसी ही हुई। उसको कहा गया जैसे तुम जा करके पहले निमाई पंडित जो संस्कृत के व्याकरण का पंडित है उसके पास में जाओ। चैतन्य महापुरुष शाम का समय था, चांद अभी धीरे धीरे उदित हो रहा था पूरब में, और समय चांद की छाया लाल लाल किरणें गंगा जी में पड़ रही थी। गंगा आरंभ सुंदर वहां पर थी। महाप्रभु व्याकरण के छात्रों को लेकर के हाकी न्याय नव्य न्याय इत्यादि उनसे पूछ रहे थे, अंत को बतला रहे थे, संस्कृत में ही सब बातचीत हो रही थी उनकी। इतने में वो कैसे अवकाश में बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी पागड़ी बांधते हुए वहां पर उपस्थित हुआ। लंबा चौड़ा पागड़ी पहने दिए, निज शिष्य समेत जो खड़े थे उपस्थित हो आते थे। बात पीछे लेना तो बे सुंदर तर्क वितर्क संस्कृत भाषा से एमन विशुद्ध भाषा से तारा बोलते चमत्कृत हो गए। सही कहने से बसे गए, बसे जाते महाप्रभु जब छात्र परस्पर गाना खुशी करते लगे। महाप्रभु कहने गेल ओरा बोलते महादंड जगत के विजय कर संगे एखन पौधा कुछ कर महाप्रभु ओ दिखे ना दिए आदर करे मान खान सभा दे बस बोलते अपना नाम केशव काश्मीरी हम सुने अपने दिल विजयी पंडित सरस्वती भरत पुत्र अतएव हमने चाहिए कुछ अपना पांडित चमरा श्रवण करे। उन्हें बोले ये तीस सुनते जाओ आप तो गंगा महिमा सुनते चाहिए। अच्छा एक बार छोड़ मतुन प्राय समांतर मिनट मत एक शत नूतन नूतन अलंकार अनुप्राण छंद इत्यादि लिए सुंदर भाव से बोलते लगा। इस तरह से वो बोलने लगा संस्कृत में। उस समय महाप्रभु जी ने को देख करके और सभी लोग आश्चर्य चकित होकर के उनके तरफ में देखने लगे। अद्भुत पंडित तो इतना सुंदर अलंकार युक्त ये बोल रहा है और देख करके वो चुप हो गया। महाप्रभु जी ने कहा आप इसमें किसी एक श्लोक का गुण और दोष जान जाए। उन्होंने कहा केशव काश्मीरी के किसी भी छंद में किसी भी पद में कोई भी गुण नहीं होती है, केवल गुण ही गुण है। उन्होंने कहा आप बीच आप कौन सा श्लोक चाहते हैं सुनना। केशव काश्मीरी ने कहा उन्होंने बीच दे के श्लोक लेकर के झट सुना दिया। वो देख करके आवाज हो गया अरे इतना सुधर कैसे होगा। उसने कहा जब तुम तो बड़े सुधर हो। उन्होंने कहा जब यदि तुम सरस्वती की कृपा से तुम दिग्विजयी हो और बाप सिद्धि है श्लोक नए नए बना सकते हो तो कोई भगवान की कृपा से सुधर भी हो सकता है। इतनी सौम्य रूप में उसने उत्तर दिया बच्चे ने ये यहां तक फर्क हो गया। इसके बाद में महाप्रभु जी को उसने महाप्रभु जी ने कहा कि यदि आप नहीं कहेंगे तो हम मैं कहता हूं इसमें पांच गुण और दोष पांच गुण इसमें हजारों दोष और हजारों गुण है किंतु मैं केवल पांच का बोलूंगा। केवल पांच का गुण और दोष बोलते उसका मुख एकदम नतमस्तक हो गया और एकदम मुख से कोई आवाज नहीं निकली। तब महाप्रभु जी के चरणों में वो नत हुआ। वहां से लौट महाप्रभु जी ने कहा उसके शिष्य ताली बजाने लगे। जब वो हार गया तो तुमने रोक दिया और उनको सम्मान देते हुए वहां से विदा कर दिया। रात में आकर के स्वप्न देखा अरे सरस्वती जी कह रही है अरे ये कोई नहीं है स्वयं परब्रह्म मेरे पति हैं। मेरी कृपा से आज तुम इनका दर्शन पाया। कल जाकर के सवेरे इनसे क्षमा मांगो। सवेरे इनके चरणों में आया। महाप्रभु जी ने इनको उपदेश दिया विद्या का कार्य दिग्विजय नहीं है। विद्या का कार्य भगवान को जान करके भगवान की सेवा में नियुक्त होना यही विद्या का चरम फल है। कृष्ण ही परम भगवान है भगवान की सीमा है उनके चरणों में जल्दी से जाकर के भजन करो यही विद्या का फल है। ये जड़ी अभिमान मैं बहुत पंडित हूं ये छोड़ करके करो ये सब विद्या यही पर हुई। यही पर अंत में चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की वयस में घर छोड़ करके यही थे। विद्या घाट पर जो हमने कथा कही थी विष्णु प्रिया जी को रात में वहीं पर छोड़ करके और सची मैया दरवाजे पर खड़ी थी एकदम लकड़ी के समान हो गई विरह में और उनको चारों तरफ से प्रणाम किया परिक्रमा करके और वो कुछ बोल नहीं सकी उनके चरण पर छू करके और गंगा नदी में हा कृष्ण कहते हुए वहां पर कूद गए और फिर कंटक नगरी में जाकर के संन्यास। इस तरह से महाप्रभु की हजारों लीलाएं यहाँ पर हुई। ये धाम पूरी से भी श्रेष्ठ है क्योंकि ये धाम गुप्त वृंदावन या वृंदावन अभिन्न है। ये पूरी अभिन्न नहीं है, पूरी कुरुक्षेत्र द्वारका या मथुरापुरी के वहीं तक है और ये साक्षात वृंदावन धाम है। बल्कि वृंदावन से भी इस धाम का वैशिष्ट है, ये अत्यंत कृपाशाली करुणाशाली है। ये जैसे कृष्ण नाम अपराध का विचार करता है, कृष्ण धाम भी अपराध का विचार, किंतु यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर पात्र देकर के और प्रेम भी उसके थाल में परोस देते हैं, ये धाम ऐसे है। इसलिए यहाँ पर यदि कोई अपराध युक्त होकर के भी गौ नित्यानंद नाम ले उनका आश्रय ग्रहण करे तो गौ नित्यानंद नहीं, ये सब विचार नाम ले के प्रेम में बड़ा परम सौभाग्यवाली सौभाग्यशाली हमारा ये स्थान देशे थी, एक आज परिक्रमा समाप्त, एक सचिव बाड़ी रंगन विष्णु प्रिया देवी करेछेन सचिमा आज के